नमस्कार
जी।
आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन मनुष्य में देवत्व का उदय पर बात कर रहे हैं।
जी।
पूज्य गुरुदेव जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, वो इसमें बताते हैं कि परमात्मा की जो असली कृपा है ना, वो कोई धन दौलत नहीं है।
हाँ, ये बहुत अहम बात है।
बल्कि वो है हमारे अंदर दिव्य गुणों का आना, उनका विकास होना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सच्ची तरक्की बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर के गुण जगाने में कैसे है।
बिल्कुल, और ये समझना आज के समय में शायद और भी जरूरी हो गया है।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े दिलचस्प उदाहरण से जो पूज्य गुरुदेव देते हैं। एक बहुत बड़े वकील साहब थे।
अच्छा।
उनकी बुद्धि का ऐसा कमाल था, कहते हैं 40 वकील उनके नीचे काम करते थे। पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसी तेज बुद्धि का इस्तेमाल देश के विभाजन जैसी एक भयानक घटना में भी हुआ।
ये तो बड़ी विरोधाभासी बात है। मतलब काबिलियत तो थी।
हाँ, काबिलियत तो थी, पर दिशा ये सोचने पर मजबूर करता है ना।
बिल्कुल। यहाँ बात ये निकल कर आती है कि क्षमता या बुद्धि वो अपने आप में न्यूट्रल है, कह सकते हैं। उसका मूल्य तो इस पर है कि इस्तेमाल कहाँ हो रहा है।
सही।
बिना सही दिशा के, जैसे उस वकील के उदाहरण में है, वो प्रतिभा विनाशकारी भी हो सकती है। तो स्रोत हमें यही सवाल पूछता है कि क्या ये दौलत या ये काबिलियत हमेशा वरदान ही होती है।
और इसी को समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं खलील जिब्रान की। लक्ष्मी जी आई वरदान देने।
हाँ हाँ, सुनिए ये कथा।
लेकिन धरती माँ ने लोगों को चेताया कि देखो, बिना पात्रता के, मतलब बिना तैयारी के अगर इच्छा पूरी हो गई तो तबाही आ सकती है।
पर लोग कहाँ मानते हैं।
वही तो, उन्होंने फिर भी क्या मांगा, वही पैसा और औलाद, लोभ और मोह।
इसका गहरा मतलब है, पूज्य गुरुदेव इशारा करते हैं कि सिर्फ पेट भरना और वासना पूर्ति, इसमें लगे रहना, ये तो पार्श्विक वृत्तियां हैं, जानवरों में भी होती हैं।
हाँ, ये तो सहज प्रवृत्ति है।
मनुष्य का असली उठान तब होता है जब वो इंसानियत को अपनाता है।
हाँ।
मतलब ऊंचे विचार, आदर्श, इन सहज प्रवृत्तियों से ऊपर उठना।
हाँ। और ये जो बिना मेहनत की कमाई वाली बात है ना, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का जर्मनी वाला किस्सा याद है।
हाँ हाँ, बिल्कुल। वो अमीर अफसर का बेटा
अखबार बेच रहा था। क्यों? क्योंकि पिता मानते थे कि जिसने खुद कमाया ना हो उसे पैसे की कदर नहीं होती, सही इस्तेमाल नहीं पता होता।
सही बात है। और खलील जिब्रान की कहानी का अंत भी तो यही था।
हाँ।
लक्ष्मी जी के वरदान से मिली दौलत ने लोगों को आलसी बना दिया और आखिर में वो भूखों मरने लगे।
तो फिर सवाल उठता है, सफलता का असली आधार क्या है? अगर दौलत नहीं तो क्या?
पूज्य गुरुदेव कहते हैं साहस, करेज। ये एक आध्यात्मिक गुण है, एक दैवीय गुण।
साहस?
हाँ। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि डकैत भी इसी साहस के बल पर सफल होता है, भले ही वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हो। गुण अपने आप में शक्ति हैं, उनका अच्छा या बुरा उपयोग वो व्यक्ति पर निर्भर है।
अच्छा, तो अगर बाहरी चीजें या सीधी मनोकामना पूर्ति वरदान नहीं है तो फिर देवता देते क्या है? दैवीय कृपा मिलती कैसे है?
पूज्य गुरुदेव यहाँ बिल्कुल साफ कहते हैं, देवता गुण देते हैं, मेटीरियल चीजें नहीं। आप गायत्री माँ से ज्ञान मांग सकते हैं, जूते नहीं मांग सकते।
ज्ञान मांग सकते हैं, जूते नहीं।
और इन्हीं गुणों से, ध्यान दीजिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति होती है। मथुरा वाले करोड़पति सेठ के बेटों का क्या हुआ?
हाँ, वो उदाहरण तो बड़ा दुखद है।
दौलत तो बहुत थी पर गुण वो नहीं थे, नतीजा सब बर्बाद। एक भाई ने दूसरे की हत्या तक कर दी, खुद जेल पहुंच गया। गुणों के बिना धन भी जहर बन सकता है।
और सोचिए, अगर देवता सीधे ही सबकी इच्छा पूरी करने लगे
तो कौन मेहनत करेगा?
हाँ, कौन अपनी काबिलियत बढ़ाएगा, कौन पुरुषार्थ करेगा? सब भगवान से ही मांगेंगे, विद्या दे दो, धन दे दो।
बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद का किस्सा कितना सही बैठता है यहाँ। वो नौकरी मांगने गए थे परमहंस जी के पास।
हाँ, परमहंस जी ने क्या कहा?
उन्होंने प्रेरणा दी कि माँ काली से भक्ति मांगो, शक्ति मांगो, शांति मांगो। यही तो था देवत्व का असली वरदान।
वाह।
और उसी ने उनके व्यक्तित्व को कितना निखार दिया।
व्यक्तित्व का विकास। हाँ। असल में यही सच्ची संपत्ति है।
हाँ, बाबा अमटे को देखिए, एक साधारण वकील थे, कुष्ठ रोगियों की सेवा का संकल्प लिया।
6 रोगियों से शुरुआत की थी शायद।
बस 6 रोगियों से, लेकिन उनके गुणों ने, सेवा भाव ने ऐसा आकर्षण पैदा किया कि सहयोग बरसने लगा। पूज्य गुरुदेव इसी को कहते हैं देवताओं का फूल बरसाना।
वाह।
और देखते देखते विश्वविद्यालय बन गया, बड़ी संस्था खड़ी हो गई। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी,
हाँ शास्त्री जी का उदाहरण भी है,
वो अपने गुणों के कारण ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, इन्हीं की वजह से नेहरू जी की नजर में आए और देश के प्रधानमंत्री बने। ये उनके अंदर का मादा था, वो जज्बा, वो गुण।
तो मतलब भक्त और भगवान का रिश्ता कोई लेन देन, कोई सौदा नहीं है?
बिल्कुल नहीं।
पूजा का असली मतलब है अपने अंदर उन जैसे गुण लाना है। जी,
महामना मालवीय जी को देखिए, साधारण स्थिति से उठे लेकिन अपने राष्ट्र सेवा के संकल्प और श्रेष्ठ गुणों के बल पर महान बने।
सही।
पूज्य गुरुदेव के अनुसार भगवान जब सच में प्रसन्न होते हैं तो वो व्यक्ति को श्रेष्ठ गुण देते हैं, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, अच्छा स्वभाव देते हैं, ऊंचा चिंतन देते हैं। यही असली कृपा है, स्थायी उन्नति इसी से आती है। तो संक्षेप में कहें, पूज्य गुरुदेव का संदेश बिल्कुल साफ है, मनुष्य में देवत्व का उदय बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है।
हाँ, अंदर के गुणों को जगाने से, साहस, ईमानदारी, सेवा भाव, आदर्शवादिता, चरित्र, इनको विकसित करने से सच्ची भक्ति, सच्ची उपासना यही है।
और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है ना
जी,
कि हम अपना जीवन कहाँ लगा रहे हैं? क्या बाहरी सफलताओं की परछाई के पीछे भाग रहे हैं या अपने अंदर के उस प्रकाश को, उस देवत्व को जगाने पर ध्यान दे रहे हैं?
सोचने वाली बात है।
पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहें तो गुणों का विकास ही वो कुंजी है जो हमें सच्चे अर्थों में निहाल करती है, वही असली सफलता है।